दिन भर 27 नवंबर बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। महाराष्ट्र में 288 विधायकों ने ली शपथ, परिवार और पार्टी में लौटे अजित पवार।
गलती स्वीकारने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है, और गलती माफ करने वाला उससे बड़ा हो जाता है। तो हमें लगता है कि परिवार का मामला था, गलती स्वीकार ली, पवार साहब ने उन्हें माफ कर दिया है, पार्टी में वे हैं।
बांग्लादेश में एक कैफे पर हुए चरमपंथी हमले के केस में 7 लोगों को सजाए मौत।
बांग्लादेश की जो पुलिस है वो कह रही है कि वो इसके साथ आईएस के कोई संबंध नहीं है।
श्रीलंका में राजपक्षे बंधुओं के शासन के भारत के लिए क्या होंगे मायने?
मैं नहीं समझता कि ये जानबूझ के प्रो चाइना पॉलिसी और एंटी इंडिया पॉलिसी चलाएंगे।
सुनिएगा दुनिया जहान, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। महाराष्ट्र में सरकार बनने से एक दिन पहले आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भाई अजीत पवार मौजूद थे। बैठक में गठबंधन की एकजुटता और जिम्मेदारियों पर बात हुई। कल शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में कहा कि देश की विकास दर में कमी जरूर आई है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अर्थव्यवस्था में मंदी है। उन्होंने कहा कि 2009 से 14 के अंत में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच ये 7.5% पर थी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को देखें तो पता चलता है कि विकास दर में कमी है, लेकिन ये मंदी नहीं है। बांग्लादेश की एक स्पेशल अदालत ने 3 साल पहले एक कैफे पर योजनाबद्ध तरीके से आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। बंदूकधारियों ने राजधानी ढाका में मौजूद एक कैफे पर हमला कर 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मारे जाने वालों में अधिकतर विदेशी नागरिक थे। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर बंदूकधारियों को मार दिया था। अदालत के बाहर सरकारी वकील मुजम्मिल हक भुइया ने बताया कि हमले की योजना बनाने वालों और इसके लिए हथियार मुहैया कराने वालों को सजा मिल गई है।
भुइया आज के बिगड़ सन्त्रासबिरोधी ट्राइब्यूनल होली आर्टिजान मामलार राय घोषणा करेछेन।
आज कोर्ट ने होली आर्टिसान कैफे पर हुए हमले के मामले में अपना फैसला दे दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई है, जबकि एक व्यक्ति को रिहा किया गया है। सरकारी वकील मुजम्मिल हक भुइया के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में किसान सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने राजधानी पेरिस की तरफ जाने वाली सभी मुख्य सड़कें बंद कर दी हैं। 2 किसान यूनियन के नेतृत्व में होने वाले इन प्रदर्शनों में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रक लिए किसान राजधानी की तरफ जा रहे हैं। किसान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात कर उन्हें अपनी मुश्किलों के बारे में बताना चाहते हैं। प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे एक किसान विक्टर रिबेरियर कहते हैं कि किसानों को सरकार की मदद की जरूरत है।
Là, c'est un coup de gueule général de toute la profession, que ce soit les céréaliers, les éleveurs. Toute la profession.
ये किसानों की आवाज है, खेती करने वालों की और पशुपालन करने वालों की भी। हम किसानों को लगता है कि हमारी सरकार और पूरा यूरोप हमें भूल गया है। कृषि का पूरा उद्योग ही संकट में है, हमें मदद चाहिए। हमें देशों के साथ होने वाले समझौतों को देखना होगा ताकि छोटे सप्लाई चेन की बात की जा सके, जिससे हमें भी काम मिले। सरकार को हमारी मदद करनी होगी ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम बेहतर उत्पाद पैदा करते हैं। फ्रांस के किसान विक्टर रिबेरियर के शब्द। अल्बानिया में मंगलवार को आए विध्वंसकारी भूकंप के बाद प्रधानमंत्री एडी रामा ने राजधानी तिराना और समुद्र तटीय शहर डुअरेस में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। अल्बानिया की मीडिया में आ रही रिपोर्टों के अनुसार भूकंप के कारण अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि भूकंप से ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे में अभी और भी लोग फंसे हो सकते हैं। हांगकांग में हाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के केंद्र बनी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में चल रहा तलाशी अभियान खत्म हो गया है। करीब 1000 लोगों की यूनिवर्सिटी की एक टीम ने पूरे परिसर में छानबीन की और कहा कि ऐसा नहीं लगता कि कोई सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी परिसर में छिपे हों। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो अपने स्तर पर इस जगह की एक बार फिर तलाशी लेंगे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर, मैं हूं कुलदीप मिश्र। महाराष्ट्र में आए नाटकीय सियासी मोड़ का पटाक्षेप हो चुका है। अब तय हो गया है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और उद्धव ठाकरे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित विधायकों ने सदन में शपथ ली। उधर अजित पवार भी अपनी पार्टी और परिवार में लौट आए, जहां उन्हें अपना भी लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने मुंबई में मौजूद बीबीसी मराठी सेवा के संवाददाता मयूरेश कोणनूर से बात की और पहले आज की हलचल के बारे में पूछा।
जैसा पूरे कल दिन एक पॉलिटिकल ड्रामा अपने एक चरम पर पहुंच गया था कि अभी क्या क्या देखना बाकी है, ऐसा महाराष्ट्र के लोगों को लग रहा था। लेकिन आज का दिन जो है वो पूरी तरह शपथ ग्रहण समारोह जो कल होने वाला है उसकी तैयारी में गया। शिवाजी पार्क जो है, दादर का शिवाजी पार्क, वहां पे शिवसेना का मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे और वहां पे बहुत बड़ा सेट लगाया जा रहा है। सिनेमा के बहुत बड़े जाने माने सेट दिग्दर्शक हैं नितिन देसाई, वो बड़ा सेट बना रहे हैं, तो वहां पे पूरी तैयारियां हुई थी। आज सुबह 8 बजे जो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाया था, विशेष सत्र, वहां पे सारे जो MLAs हैं वो आना शुरू हो गया और सबको प्रोटेम स्पीकर ने विधायक की जो है शपथ वो है दिला दी है। सुप्रिया सुले हालांकि वो MP हैं लेकिन वो सबका स्वागत कर रही थी। फिर शिवसेना, NCP, कांग्रेस और साथ ही साथ BJP के देवेंद्र फडणवीस समेत सारे जो विधायक थे वो वहां पे आए और करीब 3 से 4 घंटे प्रोग्राम चला और सबने विधायक की शपथ ले ली। उसी वक्त उद्धव ठाकरे जो कल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो राज्यपाल से मिलने गए थे और उसके बाद जो है वो NCP, शिवसेना और कांग्रेस के बीच अभी भी चर्चा चल रही है कि कल कौन कौन शपथ लेगा। उद्धव ठाकरे तो बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे ही, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद का क्या होगा तो इसकी चर्चा अभी भी शुरू है। इस बीच संजय राउत जो है वो ही हमेशा प्रेस से मुखातिब होते हैं और शिवसेना की जो है वो भूमिका हमेशा बोलते आए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि महाराष्ट्र में तो हम आ गए हैं लेकिन अगर दिल्ली में भी इस तरह का माहौल बन जाए तो आप आश्चर्य मत मानिएगा।
जो मिशन था वो मिशन पूरा हो गया। मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि हमारा सूर्ययान मंत्रालय के 6ठे मंजिल पर सेफली लैंड करे और ये सूर्ययान अगर आने वाले समय में दिल्ली में भी उतरे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा।
मयूरेश, वो तस्वीरें हमने देखी जब अजीत पवार विधानसभा पहुंचे तो अपनी बहन सुप्रिया सुले को उन्होंने गले लगा लिया, तो कहा यह जा रहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी को धोखा दे दिया, लेकिन अब उसके बाद वो पार्टी और परिवार में लौट आए हैं, तो क्या नई सरकार में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इसे लेकर क्या चर्चा चल रही है?
इसको लेकर बहुत तर्क वितर्क अभी भी हो रहे हैं। जिस तरह अजीत पवार आज सुबह विधानसभा में आए थे, जिस तरह सुप्रिया सुले ने उन्हें गले लगाया, फिर बाद में वो कुछ मीडिया से BBC से भी बोले कि वो NCP में ही थे, उन्होंने पक्ष कभी छोड़ा नहीं था, अभी वो NCP में ही है और जब समय आएगा तो विस्तार से पत्रकार परिषद लेकर वो अपनी भूमिका सबके सामने अदा करेंगे, बताएंगे। अभी भी एक शिवसेना, NCP और कांग्रेस की बैठक चल रही है यशवंतराव चौहान सेंटर में कल के शपथ विधि समारोह के बारे में, तो वहां पे भी अजीत पवार मौजूद है। लगता ये है वो जैसे कल कहीं पे गए ही नहीं थे तो उनका भविष्य तो सुरक्षित लग रहा है, लेकिन क्या उन्हें पद मिलेगा, क्या वो सरकार में शामिल होंगे, इस पर अब तक किसी भी तरह की क्लैरिटी आई नहीं है। तो नवाब मलिक जो NCP के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि उन्होंने अपनी गलती है जो वो मान ली है।
गलती स्वीकारने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है, और गलती माफ करने वाला उससे बड़ा हो जाता है। तो हमें लगता है कि परिवार का मामला था, गलती स्वीकार ली, पवार साहब ने उन्हें माफ कर दिया है, पार्टी में वे हैं, लेकिन उनका स्थान कम होगा, ऐसी कोई बात।
मयूरेश, स्पष्ट है कि BJP ये लड़ाई हार गई है, तो क्या कोई आत्म मंथन BJP में चल रहा है, कुछ गलतियों पर, चूक पर कोई समीक्षा चल रही है?
बिल्कुल समीक्षा चल रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो भी गलतियां हुई हैं, गलतियां तो हुई हैं, हम इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे। एकनाथ खड़से जो BJP के नेता थे उनको टिकट नकारा गया था, उन्होंने सारी जो अपनी आरोप है वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी लगाए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनकी जो लड़की है वो चुनाव लड़ रही थी, वो भी हार गई चुनाव, तो वो आज वैसे भी मुंबई में आए थे और उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने BBC से बात करते हुए भी कहा कि अजीत पवार के साथ सरकार बनाना ये BJP की सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जो मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अजय दादा पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जाना था, जिसके ऊपर हमने आक्षेप लिए है, जिनके ऊपर आरोप हमने किए हैं, और जो हमने बार बार बताया कि सिंचाई घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला हमारे महाराष्ट्र में हुआ है, तो उनके साथ नहीं जाना चाहिए था।
हालांकि उनकी वो निजी राय है, वो बताते रहे हैं और वो हमेशा इस जैसे ही उन्हें निकाल दिया है वो आरोप लगाते आ रहे हैं, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट जरूर दिखाता है कि BJP में एक बड़ा नेताओं का कैंप किस तरह सोच रहा है BJP के इस अजीत पवार के साथ कुछ घंटों की सरकार बनाने के बारे में।
जानकारी दे रहे थे मुंबई से BBC संवाददाता मयूरेश कोणनूर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 3 दिन शेष बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी यहां अपनी चुनावी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कल ही अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। घोषणा पत्रों को जारी करने में देरी की क्या वजह रही और इन घोषणा पत्रों में है क्या, बता रहे हैं रवि प्रकाश।
झारखंड में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। रांची एयरपोर्ट से रोज उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों में सवार नेता हर दिन औसतन 6-7 सभाएं कर रहे हैं ताकि लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर सकें। 30 नवंबर को यहां की 13 सीटों पर मतदान भी होना है। इसके बावजूद राज्य की दो प्रमुख पार्टियों बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना मैनिफेस्टो जारी करने में काफी देर की। भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। जेएमएम ने इसके ठीक एक दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब यह सिर्फ रस्म अदायगी भर है। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश कहते हैं,
अभी तक का अनुभव यही बताता है कि घोषणा पत्र जो पार्टियां जारी करती हैं उन पर अमल ठीक से नहीं हो पाता है। 30 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, ऐसे में ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इनके घोषणा पत्रों की बात आम वोटर तक पहुँच पाएगी।
इससे पहले रांची के एक होटल में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई वायदे किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव में किए गए अधिकतर वायदों को पूरा कर दिया है। अब पार्टी नए संकल्पों के साथ चुनावी मैदान में है। रघुवर दास ने कहा,
आप सरेंडर करें, मुख्य धारा में आए और जो व्यवस्था उस व्यवस्था को बदलने में सरकार के साथ सहयोग करें। लेकिन लोकतंत्र को चुनौती दोगे तो कानून अपने कानून के हिसाब से काम करेगी और आने वाले समय में उग्रवाद मुक्त झारखंड हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी तरह शहरों में इस घोषणा संकल्प पत्र में नहीं है, लेकिन मैं आज इसमें जोड़ रहा हूँ कि जो हमारे राज्य के प्रमुख शहर है वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो, आने वाले समय में पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिव सोरेन की मौजूदगी में उनकी पार्टी ने भी कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। इस मौके पर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड के लोगों को नौकरियों में 75% आरक्षण देगी। उन्होंने कई और वायदे किए। हेमंत सोरेन ने कहा,
25 करोड़ तक की सरकारी निविदाएं सिर्फ स्थानीय लोगों को, स्थानीयता एवं नियोजन नीति को बदल कर झारखंडियों के हित के अनुसार बनाना, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का जो आरक्षण हमारा 2014 के कार्यकाल का था उसे पुनः लागू करना, भूमि अधिकार कानून बना, सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को सरकारी नौकरी जब तक ना मिले बेरोजगारी भत्ता भी हम लोगों ने देने का निर्णय किया।
मैनिफेस्टो जारी करने के मामले में आज सो पार्टी पहले स्थान पर रही। पार्टी ने नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख सुरेश महतो ने कहा कि वे गांव की सरकार बनाना चाहते हैं।
जितने भी वाटर रिसोर्स हैं जहाँ से हमें पानी उपलब्ध होती है इस प्रदेश में, क्योंकि बेसिक जो भी बड़े डैम वगैरह बने हैं उस समय इनके कंसेप्ट कभी भी सिंचाई नहीं रहा है, हमेशा उद्योग आधारित डैम निर्माण हुआ है। भविष्य की हमारी जो हमारा संकल्प है इसमें नदियों का पानी जिस बेसिन पर जितना हमारा अधिकार है तो इनके उपयोग के लिए नदी से नदी को जोड़ने का जो एक कल्पना था जिसको मैंने हमारे डिपार्ट के अंदर हमने इसकी पहल की थी, से कोयल से स्वर्णरेखा को जोड़ना, बराकर से स्वर्णरेखा को जोड़ना, ऐसे और 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिसको आगे बढ़ाना, मूर्त रूप देना ताकि एक बड़े भूभाग को संचय क्षेत्र बनाया जा सके, ये तैयारी हमारे रहेगी, हमारा संकल्प।
कांग्रेस और राजद ने भी अपना मैनिफेस्टो पहले ही जारी कर दिया था। आज CPI ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि मतदाताओं के मन मिजाज पर ये मैनिफेस्टो का कितना असर होता है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
BBC हिंदी रेडियो का दिन भर कार्यक्रम आप 25, 31 और 49 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समय के मुताबिक रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे तक सुन सकते हैं। हमारे सभी रेडियो कार्यक्रम आप bbchindi.com पर लाइव भी सुन सकते हैं।
बांग्लादेश में एक अदालत ने 3 साल पहले होली आर्टिसन कैफे पर हुए चरमपंथी हमले के मामले में 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें से अधिकांश विदेशी थे। मरने वालों में एक भारतीय मूल की छात्रा भी शामिल थी। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने 5 हमलावरों को मौके पर ही मार दिया था। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की ढाका में मौजूद BBC बांग्ला सेवा की संवाददाता मुन्नी अख्तर से और पहले इस हमले के बारे में पूछा।
ये जो हमला हुआ था ये 2016 साल की बात है।
पहला जुलाई की रात में की 8:45 बज गया, तो तब जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो ने कंफर्म किया कि हाँ एक हमला हुआ है और इसमें काफी लोग मारे गए हैं। 2 जुलाई में हमला हुआ था, 1 जुलाई में। 2 जुलाई में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खत्म किया तब पता चला कि इसमें जो 6 हमलाकारी थे वो मर गए और एक को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो हमला हुआ था इसमें हमलाकारियों ने जिस लोगों को मार डाला उसमें सब मिलजुल के ऑपरेशन खत्म होने तक पता चला कि 22 लोग मारे गए और इनमें से जो 18 लोग थे वो बाहर की देश के थे और बाकी लोग बांग्लादेशी थे, इसमें से एक भारतीय भी मारे गए।
और आज जिनको सजा सुनाई गई है जिन लोगों को, उन लोगों के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है?
आज की जो राय आई है वो एंटी टेररिज्म जो ट्राइब्यूनल है उसने दिया है। इसमें से 8 लोगों के विरुद्ध राय आया है, इसमें से 7 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और 1 लोग थे उसको रिहा कर दिया गया। इसमें से ज्यादा लोगों ने HSC किया हुआ है, HSC मीन्स हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इनकी जो एज है वो लगभग 20 से शुरू करके 30 में से खत्म हुआ। पुलिस जो कह रही है कि जो 1 लोगों को रिहा कर दिया गया उनकी विरुद्ध भी उन्होंने अपील करने वाले हैं।
मुन्नी एक चीज और बताइए कि ये जब ये हमला हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की आवाजें उठी थी कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट का एक मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश ये कहता रहा था कि एक लोकल गुट था, लोकल ही लोग इसके पीछे शामिल थे। क्या ये विवाद अभी भी अनसुलझा है, इस पर कुछ स्पष्ट जानकारी सामने आई है अभी?
बांग्लादेश की जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो कह रही है कि वो इसके साथ IS के कोई संबंध नहीं है। लोकल जो टेररिस्ट ग्रुप है जिसको बैन किया गया है JMB, वो लोग न्यू JMB का सदस्य है, इसके साथ इस्लामिक स्टेट का कोई संबंध नहीं है, अब तक पुलिस से बोल रही है। लेकिन जिसने हमला किया था वो लोग ने ये क्लेम किया था कि वो IS के सदस्य है और जब हमला हुआ था 2016 में उस हमले के बाद इस्लामिक स्टेट उसकी जो न्यूज एजेंसी है आमक उसने भी ये क्लेम किया था कि उसकी सदस्य ने ये हमला किया, लेकिन जो बांग्लादेश के सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बोल रही है कि वो इस्लामिक स्टेट नहीं थे।
जानकारी दे रही थी BBC बांग्ला सेवा की संवाददाता मुन्नी अख्तर। श्रीलंका के पूर्व रक्षा प्रमुख गोटाभाया राजपक्षे अब देश के राष्ट्रपति बन गए हैं और वो अपने पहले विदेशी दौरे पर शुक्रवार को भारत पहुंच रहे हैं। चरमपंथी संगठन LTTE के खिलाफ उनकी निगरानी में हुई कार्रवाई के बाद उन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे थे। गोटाभाया राजपक्षे ने अपने भाई महिंदा राजपक्षे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गोटाभाया राजपक्षे के आगे क्या चुनौतियां हैं और उनके कार्यकाल में भारत श्रीलंका के संबंध क्या रूप ले सकते हैं, इस हफ्ते के दुनिया जहान में इसी की पड़ताल कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद।
दुनिया जहां
गोटाभय राजपक्षे वन मम श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज्य।
श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए ये है 70 वर्षीय गोटाभाया राजपक्षे। सेना में 20 साल रहने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर हुए गोटाभाया राजपक्षे ने IT क्षेत्र में भी काम किया। 2005 में वो अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 10 साल तक श्रीलंका के रक्षा प्रमुख रहे और उनके खाते में देश के तमिल चरमपंथी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के खात्मे का श्रेय दर्ज है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान तकरीबन 1,00,000 लोग मारे गए थे। 2009 में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों के गायब होने का सिलसिला थमा नहीं था। कहा जाता है कि इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले चरमपंथियों को भी मार दिया गया और 20,000 से अधिक आम लोग गायब हुए। उस दौरान ऐसी सफेद वैन घुमा करती थी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता या LTTE के समर्थक रहे लोगों को उठा लिया करती थी। गृह युद्ध के समाप्त होने के बाद गोटाभाया राजपक्षे से वरिष्ठ पत्रकार S. वेंकट नारायण ने मुलाकात की थी। वो कहते हैं कि तब गोटाभाया ने LTTE पर जीत का श्रेय अपने भाई और तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को दिया था। वरिष्ठ पत्रकार S. वेंकट नारायण बताते हैं,
उन्होंने मुझे ये बताया कि प्रेसिडेंट जो उनके बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षा, उनको साफ साफ बताए थे कि भाई आप LTTE को खत्म करना है, जो आपको चाहिए मुझे बताओ, मैं उसका व्यवस्था करूंगा। तो एक स्पेसिफिक मिशन इनको दिया गया था और उन्होंने उस मिशन को खत्म करने के लिए औजार मांगे थे जो हिंदुस्तान देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मनमोहन सिंह
उस समय डीएमके के साथ कोलिशन सरकार चला रहे थे, तो चाइना और पाकिस्तान पे कंधे पे ये औजार लिए थे और एलटीटी को खत्म कर दिए थे।
नौ भाई बहनों में पांचवें नंबर के गोटाभाया बहुसंख्यक सिंगला समुदाय और देश के सबसे ताकतवर राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। चुनाव में उन्हें 52% से अधिक वोट मिले। इस चुनाव में उनके खिलाफ सजित प्रेमदासा की चुनौती थी, जो पिछली मैत्रीपाला सिरिसेना सरकार में अहम पद संभाल चुके हैं। इसी साल अप्रैल में ईस्टर के मौके पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण साफ साफ दिखाई दिया। बहुसंख्यक बौद्ध जो सिंगला समुदाय से आते हैं, उन्होंने मुसलमानों का बहिष्कार किया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सीधा सीधा फायदा गोटाभाया राजपक्षे को हुआ। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर एसडी मुनी कहते हैं कि गोटाभाया का चुनाव प्रचार असुरक्षा और सरकार की नाकामयाबियों पर केंद्रित था।
इसी चीज का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि उन्होंने कहा कि वो टेररिज्म और इस तरह के हालात से जूझने में सक्षम है। दूसरी बड़ी बात जो उनके फायदे में थी, वो पुरानी सरकार की नाकामियां थी। जो पुरानी सरकार थी वो बिल्कुल काम नहीं कर सकी, सिक्योरिटी के मामले में नहीं और मामलों में भी, और उनका अलायंस कोएलिएशन जो वादे उन्होंने किए थे जनता से, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार निकम्मी है। और चूंकि सुजीत प्रेमदासा उसी सरकार के हिस्से थे, इसलिए उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा।
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण श्रीलंका के अल्पसंख्यक समुदायों, मुसलमानों और तमिलों में एक असुरक्षा का डर बैठा हुआ है। गृह युद्ध के दौरान गोटाभाया द्वारा की गई कार्रवाइयों ने भी उन्हें डरा रखा है। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद दिए अपने भाषण में गोटाभाया कह चुके हैं कि वो सभी समुदायों को साथ लेकर चलेंगे और विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। गोटाभाया ने कहा है कि गृह युद्ध के दौरान उन पर लगे मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों को लेकर वो कुछ नहीं करेंगे। श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी इलाके तमिल बहुल है और तमिल खुद को दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं। तमिलों को लेकर भारत की भी चिंताएं रही हैं। तमिलों को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए गोटाभाया को क्या करना चाहिए, इस सवाल पर एस वेंकट नारायण कहते हैं,
देखिए वहाँ मुस्लिम्स और तमिल्स जो है ना, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ये अगर श्रीलंका को आगे बढ़ना है, सबको साथ लेके गोटाभाया राजपक्षा आगे बढ़ना है, नहीं तो उस देश में तरक्की होना मुश्किल होगा। और अगर मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि हमसे नाइंसाफी हो रही है और सिंगला मेजॉरिटी वाले उनके ऊपर अटैक्स जारी रखेंगे तो नहीं चलेगा, तो वो ये आतंकवाद यहाँ बढ़ सकता है। और तमिल्स में भी अगर ये कुछ नहीं करेंगे उनके लिए जानबूझकर और मजबूरन, तो एलटीटी जैसा एक संस्था फिर उभर आने का खतरा जरूर है।
देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के अलावा विदेश नीति भी गोटाभाया के आगे एक प्रमुख चुनौती है। ऐसा माना जाता है कि सिरिसेना की ही तरह गोटाभाया भी चीन के करीब है। श्रीलंका पर चीन का 50,000 करोड़ से अधिक का कर्ज था, जिसके बाद सिरिसेना सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था। गोटाभाया साफ कर चुके हैं कि वो हम्बनटोटा की लीज की समीक्षा करेंगे। चीन के कई हाईवे और पावर प्रोजेक्ट अभी और श्रीलंका में बनने हैं। क्या चीन और श्रीलंका वाकई में बेहद अच्छे दोस्त हैं और श्रीलंका भारत को नजरअंदाज कर रहा है, एस वेंकट नारायण कहते हैं।
इसके बारे में काफी लोग हिंदुस्तान में समझते हैं कि ये राजपक्षा परिवार जो है ना चाइना के चमचे हैं। ये इनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि ये जानबूझ के प्रो चाइना पॉलिसी और एंटी इंडिया पॉलिसी चलाएंगे, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है बुद्धिज्म के जरिए से, हर एक बुद्धिस्ट जो श्रीलंका में रहते हैं उनका ख्वाहिश है बोधगया और बाकी जितने भी जगह हैं जहां भगवान बुद्ध रह चुके हैं वो आके दर्शन करने का ख्वाहिश रखते हैं। वहां के काफी लोग हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आते हैं और हम 1,00,000 घर जो बेघर हो गए थे तमिल से श्रीलंका में, उनके लिए हम वहां बना रहे हैं। और वहां अरबों का मदद भारत सरकार ने दिया है और हमारे प्राइवेट कंपनीज भी वहां काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो इसलिए ये श्रीलंका और भारत के बीच में जो संबंध है सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, कल्चरल है और रिलीजियस है। ऐसा संबंध चाइना से नहीं है।
गोटाभाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हें बधाई देने कोलंबो पहुंचे और उन्होंने उन्हें भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने इस न्योते को स्वीकार किया और वो 29 नवंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत दौरे से पहले श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करेंगे और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसके पड़ोसी देश को कोई नुकसान हो। साथ ही गोटाबाया ने ये भी कहा है कि वो भारत और चीन दोनों के साथ करीबी रूप से काम करना चाहते हैं। भारत अपने यहाँ आने वाले सामान के लिए कोलंबो बंदरगाह का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन भारत ने पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने नहीं माना था। भारत को श्रीलंका से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए और क्या करना चाहिए, प्रोफेसर मुनी इस पर कहते हैं।
मैं समझता हूँ भारत के साथ सामान्य संबंध बढ़ेंगे। भारत को भी ये चाहिए कि वो श्रीलंका के लोगों की नजरों में केवल तमिलों का मित्र होकर नहीं उभरे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको सिंगली क्षेत्रों में भी लेने चाहिए जो बहुत समय से नहीं लिए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से इसकी तरफ मामूली सी शुरुआत हुई है और उस शुरुआत को भी बढ़ाना चाहिए। इस पे निर्भर करेगा कि भारत भी गोटाबाया की सत्ता को कैसे देखता है और गोटाबाया डोमेस्टिकली क्या करते हैं और चीन के साथ क्या करते हैं।
भारत और राजपक्षे परिवार के संबंध कुछ कड़वे जरूर हुए हैं, लेकिन पिछले दो सालों में भारत ने इन संबंधों को सुधारने की काफी कोशिश की है। एक तरफ पाकिस्तान चीन संबंध है तो दूसरी ओर नेपाल चीन में दोस्ती बढ़ रही है और अब श्रीलंका चीन के नजदीक जा रहा है, तो ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि उसका सबसे करीबी दोस्त रहा श्रीलंका भी उससे दूर चला जाए। गोटाबाया जब शुक्रवार को भारत में होंगे तो उनसे दोस्ती बढ़ाने की और भी कूटनीतिक कोशिशें जारी रहेंगी।
मोहम्मद शाहिद की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह और आज सबसे पहले बात बैडमिंटन की। किदांबी श्रीकांत लखनऊ में खेली जा रही सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। उन्होंने रूस के व्लादिमीर मलकोव को सीधे सेंटों में 21-12 21-11 से हराया। मैच सिर्फ 36 मिनट में ही खत्म हो गया। दूसरे राउंड में हमवतन पी कश्यप से उनका मुकाबला होगा। उन्हें पहले दौर में फ्रेंच खिलाड़ी लुकास कॉर्वी से वॉकओवर मिला। 18 साल के लक्ष्य सेन भी अगले दौर में पहुंच चुके हैं। पहले राउंड में उनका मुकाबला फ्रांस के थॉमस रॉसेल से हुआ था, लेकिन वो आखिरी वक्त पर टूर्नामेंट से हट गए, इसीलिए भारतीय शटलर को वॉक ओवर मिला। पिछले महीने ही भारतीय शटलर ने स्कॉटिश ओपन का खिताब अपने नाम किया था। वो ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बने थे। वहीं महिला वर्ग में वृशाली गुमाड़ी को 21-16 21-16 से हराकर अश्मिता चलेहा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। ये मैच 32 मिनट में ही खत्म हो गया था। क्या कहना है अश्मिता चलेहा के बारे में बैडमिंटन एक्सपर्ट दिनेश खन्ना का, आइए जानते हैं।
साइना नेहवाल ने अपना नाम वापस ले लिया है, पर इसमें जो हमारी कोई उभरती हुई खिलाड़ी हैं जैसे अश्विता छलिया हैं और कुछ और खिलाड़ी हैं, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके साथ किस तरह वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सामने खेलती हैं वो एक उनके लिए अच्छा अनुभव रहेगा।
ये थे बैडमिंटन एक्सपर्ट दिनेश खन्ना। और अब बात क्रिकेट की करते हैं। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच इकलौता टेस्ट मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। अफगानिस्तान की टीम 187 रनों पर ऑल आउट हो गई। रहकीम कार्नवाल ने वेस्ट इंडीज की ओर से 7 विकेट लिए, वहीं अफगानिस्तान की ओर से जावेद अहमदी ने 39 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अफसर जजई और आमिर हमजा ने 32 और 34 रनों का योगदान दिया। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब मुख्य समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र में आज शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के महाविकास अघाड़ी के नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में गठबंधन की एकजुटता और जिम्मेदारियों पर बात हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में कहा कि देश की विकास दर में कमी जरूर आई है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि अर्थव्यवस्था में मंदी है। बांग्लादेश की एक स्पेशल अदालत ने 3 साल पहले एक कैफे पर योजनाबद्ध तरीके से हुए आतंकी हमले के मामले में 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह नमस्कार भारत में होगी। समय आप जानते हैं 6:30 बजे। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। तो अब कुलदीप मिश्र को सभी साथियों के साथ दीजिए इजाजत। बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।